जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभारी जसुदानंदन ब्रज जन रंजन जसुदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तिरवन चारी जमुना तिरवन चारी
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की समवेत भक्तवृंद की हिताय गौर हरि प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ दशम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 45। एषा तवानुजा बाला हन्तुं नार्हसि कल्याणी इमां त्वं दीनवत्सलः एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणी एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणी इमां त्वं दीनवत्सला। यह दीन बालिका देवकी तुम्हारी कन्या के समान है, स्नेहपात्री है और छोटी बहन है। तुम दीन वत्सल हो, अतः इस निरपराधी वत्सला अर्थात आपने वात्सल्य की पात्री का वध करना तुम्हारे लिए कैसे उचित होगा। तो कल हम सुने थे कि अभी विवाह हो चुका है, विदाई उत्सव चल रहा है, विदाई उत्सव में गाड़ी में बैठ चुके हैं वरवधु और कंस ने ड्राइविंग शुरू कर दिया है। अब मैं कल बता था भी आकाशवाणी हुआ और ये आकाशवाणी ऐसा हुआ कि सभी सुने, सबको सुनाया पड़ा, पब्लिकली अनाउंसमेंट हुआ और कंस का क्या रिएक्शन हुआ कल आपको पता चल चुका है। कंस स्टीयरिंग छोड़ करके कूद करके जम पीछे आ करके भरे पब्लिक के सामने बिल्कुल बीच रोड पे, मेन रोड पे जा रहा था, मेन रोड पे ट्रैफिक जाम, उसमें गाड़ी खड़ा करके घूम करके और केस पकड़ करके तलवार निकाला गला काटने, वहीं पर मर्डर करना चाहिए। थोड़ा आप अपने मानसिक चिंतन में चले जाइए, हजारों हजारों स्नेह पात्री जो वसुदेव को इतने सम्मान करते थे, देवताओं की तरह वसुदेव की पूजा करते थे, वो देवकी का भी इतने गुण गारिमा प्रसिद्धि था, उन दोनों आज वर और वर वधु, एक्चुअली आप लोग सब जानते भी होंगे, जब कभी कोई वर और कन्या, कोई युवक और युवती वर कन्या बन के विवाह के दूसरे दिन जब विदाई होती मंगलसूत्र धारण करके, उस विदाई वर वधु रूप में उनको हर पार्वती लक्ष्मी नारायण ऐसे लोग मानते हैं, पूजा करते हैं उनकी, यस बड़े सम्मान्य मानते हैं उस दिन तो उनका, है ना। तो उसी समय में उद्वाह पर्वणी ये शब्द आया, उसी समय में, और उनको जब सभी के सामने दिन दोपहर में मर्डर करना जा रहा था, तो जितने लोग और बड़े बूढ़े वयोवृद्ध जद लोग थे जो वसुदेव देवकी को अपनी बेटी कन्या जैसे मानते थे, और समवयस्क थे, वसुदेव के फ्रेंड भी बहुत थे, देवकी का भी सपोर्टर थे, बहुत लोग थे, महाराज राजनिष्ठ भक्त बहुत थे, यादव लोग, वो लोग सब देखे देखे बोले क्या कर रहा है, इसी समय देवकी को मारने जा रहा है। तो उन लोग का मन में बड़े क्रोध विकार ये सब भी साधारण होना चाहिए, आपके सामने कोई ऐसे करेगा आप छोड़ेंगे क्या, भले हमारा ताकत ना हो लेकिन मन में तो कहेंगे, गाली तो बकेंगे। तो वो लोग का क्या प्रतिक्रिया हुआ, सारे दौड़ पर अरे रुक रही थी कंस तेरे दुर्बुद्धि कैसे आ गया, ऐसे कैसे दुर्बुद्धि हुआ, कह करके लोग बोलते कि सच में ऐसा करने जा रहे हो, तो हम विश्वास नहीं कर रहे, इतने प्रेम से गाड़ी चला रहा था, हो क्या गया तेरा। अब वसुदेव जी देखे जब कंस कूद करके अपनी अभी अभी नव विवाहिता पत्नी उसके बिल्कुल केस पकड़ लिया, दबोच ले तलवार उठा निकाल लिया गला काटने के लिए, वसुदेव जी तुरंत खड़े हो गए, वो तो बड़े बुद्धिमान थे, और उनके हाथ पकड़ गए, जिस हाथ में तलवार पकड़ा था बाएं हाथ में चोटी खिंचा पकड़ा था, दाएं हाथ में तलवार पकड़ा थी, दाहिने हाथ को पकड़े थे दोनों हाथ में, और कंस इस आकाशवाणी को सुनकर के इतने क्षोभित हो चुका था, क्रोधित हो चुका था कि मुझे मारेगा, मैं मर सकता हूं, इतने क्रोध से मैं मरूंगा ये बात को सोच करके इतने डर गया था, और डर से बचाने के लिए कितने वो अपने अंदर चल रहा था, शारीरिक प्रतिक्रिया हो रहा था कि उनका हाई बीपी हो चुका था, और हार्ट बीटिंग भी क्या होता है उसको, हार्ट अटैक की स्थिति है ना, हार्ट बीटिंग बिल्कुल बढ़ चुका था और बीपी भी हाई हो चुका था, और जो जो सब हाई हो चुका था, पसीना उतर रहा था उनसे, हाँ शुगर शायद लो हो गया था, पसीना उतर रहा था, थर थर कांप रहा था वो। अगर इस स्थिति में ना होता तो वसुदेव का इतनी शक्ति नहीं था कि महाबली कंस के हाथ को रोक सके, वो छींक फेंक कर मार देता हो, लेकिन ये तभी वो अपने शरीर के बस में नहीं था, एक थर थर कांप रहा था क्रोध के मारे, तो बिल्कुल स्थिति बिगड़ गया था उसका, पसीना उतर रहा था उसका। इस स्थिति में अब वसुदेव जी हाथ को पकड़े हैं, तो वसुदेव जी सोच रहे हैं भाई ये कोई विचित्र बात नहीं है, ये असुर स्वभाव के लोग हैं, और अभी मुझे क्या कर्तव्य करना चाहिए, ये आसन्न विपद से कैसे बचाऊं, क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं आपका ही घर में गाय रखे हैं, एक बैल हुआ, मेल बछड़ा हुआ, बछड़ा बड़े बदमाश होते हैं, थोड़ा बहुत हीरो होते हैं ना, तो बड़ा हुआ पार्वती, तो इतने बदमाश हो गया कि कंट्रोल ही नहीं कर पाते उसको। जैसे कोई पशु को उसको लाने के लिए कंट्रोल में क्या करते, उसको घास दिखाना पड़ता था, खाया पीटा खुद पर बांध लेंगे उसको, है ना, उसके नाक में छेद करेंगे तो खिला पिला करके, है ना। इसी प्रकार से कोई पशु को, अवध्य पशु को बस में लाने के लिए पहले तृण आदि दे करके थोड़ा खिला करके उनको थोड़ा फिट करके फिर उसको बांध दो कुछ करो, ठीक। इसी प्रकार ये बड़ा बेकंट्रोल पशु की तरह कंस है। हो भाई इसी क्रोध में उसको क्या करूं, तो वसुदेव जी ने तुरंत बुद्धि निकाले, उनको थोड़ा प्रशंसा किया जाए। वही किसी शत्रु को सामने उनको अपने कबड़ में लाने के लिए नीति शास्त्र को उन्होंने अपनाया। नीति शास्त्र कहता है कि बड़े बड़े राजनीति में ये पांच जो तीन नीति अपनाया जाता है, चार नीति, साम दान दंड भेद। बड़े बड़े राजा अपने को शत्रु हुआ तो उसको अगर वो कंट्रोल करना चाहेंगे, वही नीति शास्त्र कहता है चार प्रकार के उपाय है। क्या? साम नीति, तो उनके साथ समता करो, फ्रेंडशिप कर लो, साम फ्रेंडशिप करके उनके साथ मिला मिला के रखो, तो काम बन जाएगा, साम नीति इसको कहते हैं। जब वो काम नहीं किया, साम नीति ने समझ नहीं कर पाया, तो दान कुछ दे दो, बड़ी अमाउंट 1-2 करोड़ रुपया दे दो, कि नहीं तो कोई इलाका दे दो, कुछ फ्लैट फ्लैट दे दो, बस जाएगा आपको, फलवर हो जाए, फिर आपका झगड़ा नहीं करेंगे आपसे, समझ रहे ना। ऐसे बहुत काम करते हैं ना, बड़े बड़े मिनिस्टर देखे घोड़ा हो गया तो दे दिया, अरे लो रहो, मुँह में फेंक दिए कुछ धन वगैरह तो चुप हो जाएगा, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, खत्म हो जाए फिर हल्ला फिर फेंक देंगे। ऐसे साम दान अगर उसमें भी नहीं होता तो आपके बल है तो दंड मार पीट करके सवार करो, दान तोड़ देंगे तो डर के मारे चुप रहेगा। साम दान दंड और भेद, जब वो भी काम ने ब्रिटिशर्स से इंडिया को देखे कि कुछ नहीं कर पाए और भेद कर दिए, आपस में फूट डाल देंगे, अपने भाई बहन परिवार परिवार में तुम आपस में झगड़ मरेंगे, वो फायदा लेगा, तो इसे भेद नीति कहते हैं। तो ये पॉलिटिक्स का, राजनीति का, ये वसुदेव बड़े नीतिज्ञ थे, उन्होंने देखे कि बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकता, बल तो उनके सामने काम करेगा नहीं, दान उनको क्या दोगे, वो राजा है, अब दंड तो समान नहीं, और कोई काम नहीं करेगा। ये चार नीति का एक नीति केवल साम नीति ही काम कर सकता है, एक ही काम करेगा। तो साम नीति में पांच प्रकार के उपाय किया जाता है, नीति शास्त्र कहता है। क्या? सबसे पहले होता है गुण कीर्तन, संबंध, लाभ, भेद और उपकार। ये पांच उपाय से साम नीति को अवलंबन किया जाता है। तो उन्होंने पांचों को अपनाया, इसको कंट्रोल करने के लिए, समझाने के लिए पांचों को अपनाया। तो सबसे पहले श्लोक में उन्होंने बोलना शुरू किए, सबसे पहले श्लोक में वासुदेव तुरंत हाथ पकड़कर बोले, श्लाघनीय गुण सुरेर भवान भोज श्रेयस्कर स कथं भगिनी हन्यात स्त्रीय उद्वाह पर्वणी। तो इसमें बिल्कुल गिनाते हैं कि बिल्कुल साम नीति का पांच को उन्होंने उपाय किए। सबसे पहले गुण कीर्तन करते हैं, श्लाघनीय, श्लाघन मतलब आप युवराज कंस पूरे विश्व में जितने बड़े बड़े वीर पुरुष हैं आपके गुणगान करते हैं, जानते रही कंस महावीर है, त्रिलोक विजयी महावीर है कंस, आपके गुणगान तो पूरे दुनिया करता है, श्लाघनीय, इतने प्रशंसयोग्य वीर पुरुष है। तो इसे कहकर उनके गुणगिन करते हैं, सारे दुनिया के लोग आपको बात बजाते हैं, आपका नाम सुनते हैं, हाँ हाँ कंस महाराज इतने बड़े वीर हैं, ऐसे श्लाघनीय, क्योंकि जानते हैं कि जो भगवत विमुख लोग होते हैं, असुर प्रकृति के लोग होते हैं, उनको अगर मन खुश करना है ना, थोड़ा उनको तेल मालिश करो, मतलब प्रशंसा करो, खूब बाहर से जा करके आउट ऑफ वे जाकर प्रशंसा करो, जो नहीं है उससे और बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा, वो खुश हो जाएंगे, वाह वाह बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे सनातन गोस्वामी, वो भी राजमंत्री थे, बड़े बुद्धिमान थे, अब जब जेलर उनके पास आता था जेल इंचार्ज सुपरिटेंडेंट मिलने के लिए, वो तो वो मंत्री थे उनको, तो बात तो उनको बोले कि तुम तो साक्षात जिंदा पीर हो, बताओ, वो थर्ड क्लास आदमी था, लेकिन वो तो वो फूल गया, आ रही है महामंत्री मुझे जिंदा पीर बोल रहे हैं, तो होंगी क्या मुझे देखे होंगे, शायद मैंने आईना देखा नहीं आज, मैं इतने सुंदर दिखता हूँ, इतने गुण मेरे पास है, वो तो फूल गया। तो इसी प्रकार कंस भले थर्ड असुर तो है ही, बस तो ठीक समझ रहे हैं, लेकिन बोलते अरे सारी दुनिया के लोग अभी इतने बड़े प्रश्न, महावीर हो, त्रिलोक विजयी, त्रिभुवन विजयी वीर हो, महासुर हो, तो इसमें कौन से खुश, क्योंकि जो भगवत विमुख लोग उनको खुश करने के लिए क्या करना होता है, प्रशंसा करना होता है। और जो भगवत भगवान के उन्मुख जो भक्तगण होते हैं वो प्रशंसा कभी सुनना नहीं चाहेंगे, तो इसलिए भक्तों को प्रशंसा नहीं करना, सच बताना। लेकिन जो भक्त नहीं है वो प्रशंसा में पड़ जाएंगे, तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम लेने के लिए सार सार करो तो काम बन जाएगा, नहीं वहाँ सच्चाई काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ऑफिस शाम दान दंड दान ज़्यादा काम कर जाता है। तो श्लाघनीय सुरेर, बड़े बड़े वीर आपकी प्रशंसा करते हैं ये गुण कीर्तन के। फिर बोले गुण कीर्तन शाम का दूसरे है संबंध, संबंध कौन सा, भोज श्रेयस्कर, भोज वंश के महान होनहार तो आप ही है, इसी वंश के आप कुलधार है, इस वंश के तो धुरी हो, भोज वंश के श्रेष्ठ पुरुष आप ही हो। भोज श्रेयस्कर, भोज वंश का कुल वर्धन कर, मान वर्धन करने वाला तो आप ही अके हो, तो आप हम ही भोजवंशी है, ये तुम्हारे बहन भी भोजवंशी, आपकी बहन तो है ही है, तो संबंध स्थापन करते हैं। भोज श्रेयस्कर स कथंग भगिनी, भगिनी कह करके अभेद करते हैं, आपकी बेटी तो है, आपके अति स्नेह भाजना कन्या जैसा है, छोटी सी कन्या जैसी है भगिनी, और उसमें अभेद करते हैं और गुण कीर्तन संबंध, और भगिनी हन्यात, उसको मारेंगे कि जैसे कहते हैं कि भगिनी की वध करने से आपका जो अपकीर्ति होगा सारे दुनिया में लोग क्या कहेंगे, इस एक डर के मारे डरपोक, आपने भय के मारे एक अबला विवाहित कन्या को मारा, ओह थर्ड क्लास लोग भी आपका अपमान करेंगे, आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, हंसेंगे, आपको बड़े अकीर्ति साभि जातस्य अकीर्ति, भगवान कहते हैं कि अर्जुन को अकीर्ति जो सम्मानीय व्यक्ति हो ना उनको असम्मान कर देना उसको मरने से भी ज्यादा, मर जाए भले लेकिन अपमान सहन नहीं कर सकते। तो आप इतने बड़े सम्मानीय श्लाघनीय पुरुष है, आपके लोग बोलेंगे कि डर के मारे कंस जैसा वीर पुरुष अपने वीरत्व को जानजड़ी दे करके छोड़ करके कि दुर्बल अबड़ा को हत्या किया, और किसी ने मारा वो कोई आकाशवाणी आनंद हुआ डर के मारे, छी 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 छी, इतने बड़े घोर अपमान आपको, तो इस प्रकार अपमान से बचा बच जाएंगे, ये बात को समझ करके इसे लाभ होगा, आपको बड़ा लाभ होगा, आपके कीर्ति रहेगा, आपका जस रहेगा, इसलिए लाभ होगा, इसलिए लाभ, ये भी साम का नीति है। उसके बाद उद्वाह परमणि, ये उपकार की बात कहते हैं, ये देखो शादी के समय है, अभी अभी तूने ही तो कन्यादान किया, कन्यादान कराया, इतने भारी दहेज दिया, सब कुछ दिया, गाड़ी खुद चला रहे थे, तो इसी समय मारना, तो कम से कम मेरे पत्नी है छोड़ दो यार, जीवन दान कर दो, उपकार होगा तेरा। तो इस प्रकार पूरे पांच साम नीति को लगा करके उनको बोले, लेकिन कंस को कुछ काम नहीं किया, मूर्ख है, उसको कोई ज्ञान से कोई समझा नहीं सकता। जैसे कहे नीति वाक्य में जो खल होते हैं तो उनको अगर सद्बुद्धि दो वो काम नहीं करेगा, वो ज़्यादा गुस्सा होंगे, हाँ सांप को पाल करके विष पिलाओगे उसका विष ही वर्धन होगा, वो आपको ये नहीं करेगा, विष ही वर्धन होगा उसका। तो इसी प्रकार खल है, समझा नहीं तो फिर बोले मैं उसको मार दूँगा, बोले क्यों कि अभी सुना नहीं अपने अनाउंसमेंट हुआ, उसका बेटा मेरा काल होगा मारेगा। तो वसुदेव सीधा कहते हैं कि हे जीवराज, मृत्युर जन्म बतांग वीर देहे न सहजायते, हे वीर क्या आप मृत्यु को टाल सकते हो, आप मरने के भय से देवकी को मारना चाहते हैं ना, देवकी तो कोई अपराध नहीं किया, आपका दोस्त तो नहीं किया ना, वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं किया, फिर इसको क्यों मारना चाहते हैं ना, अनाउंसमेंट हुआ अभी कि उनका बेटा मुझे मारेगा, तो आप मर जाएंगे इसी को डर रहे ना, आप मरने को मृत्यु भय से कारण देवकी को मारना चाहते ना, इसी को मरना चाहते, मतलब मृत्यु को क्या आप टाल दोगे, देवकी को मारने के बाद भी आप मृत्यु से बच जाओगे क्या, क्यों नहीं बच सकता, तो इस युक्ति को देने के लिए कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप बच नहीं सकते, क्यों? मृत्युर जन्म बतांग वीर देहे न सहजायते, अद्य वा सताम तेवा मृत्यु वय पाणिनां ध्रुवः। कहते हैं कि देखो, ये जन्म और मृत्यु ये जीव का नहीं होता, जीवात्मा ना जन्म होता ना मरता है ना, तो जन्म नहीं होता मरेगा कैसे? नहीं, हम जन्म मरेंगे मरने की बात, अरे ये आपके देह का है, देहे ना सहज आयते, आप देह मानते हैं अपने आप को, देह का जन्म होता है और देह का मृत्यु हो, अब देह का मृत्यु तो होगा ही, पहले से मरा हुआ है वो, जिंदा थोड़ी है, देह तो ऐसी जड़ है, मरा हुआ है, मरी हुआ हो जाएगा, पुराना हो जाने से वस्त्र को निकाल देते हैं, तो इसलिए पुराना वासान से जीर्णानी जथा विहाय, जैसे ये शरीर तो ऐसी जड़ है, तो पुराना हो जाए उसको नलायक काम के लाइन तो फिर उसको फेंक कर दूसरा करते हैं, तो इसे तो जाएगा, उसको बचा नहीं जा सकते, क्यों नहीं बचा सकता? अरे अद्यवा सताम तेवा बोलते, आज हो काल हो 100 साल के बाद हो, होगा ही निश्चित ध्रुवं मृत्यु। भगवान ये बात कह दे, जन्म से ध्रुवं मृत्यु, जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु तो निश्चित होगा, ऐसे नहीं बचा जा सकता, तो मृत्यु को कभी अपरिहार्य सत्य है, उसको अवॉइड किया नहीं जा सकता, तब क्यों इसके भय से जो निश्चित होगा तो उसको सामना करने के लिए प्रयास करो। क्या प्रयास कर सकते? अरे जैसे मार्कंडेय ऋषि किया, मार्कंडेय ऋषि को भी आयु था 7 साल का, पता है ना, 7 साल का आयु था, और उनके पिता मृकंड और उनकी पत्नी बहुत जैसे बड़ा हो रहा था बेटा, और अच्छा पढ़ लिख रहा था, इतने रो रहे थे, उनको परेशान हो रहा था, मैं क्लास में फास्ट होकर आ रहा हूँ, पिताजी रो रहे हैं, अब उनको क्या पता, बेटा को मालूम नहीं था, कि उनको पता था कि साहब 5 हो गया और 2 साल खत्म, तो इसलिए रो रहे थे, जितने बड़ा बढ़ रहा था अपना तो रो रहे थे। तो एक दिन पूछा, बोले डैडी मम्मी हो क्या रहा है आपका, आप क्यों रो रहे हैं? मैं ऐसे करके, तब उन्होंने रो रो करके खुल के बताया कि ऐसे ऐसी बात है, अब तो थोड़े दिन बाकी रहा, आपका एक्सपायरी डेट आ रहा है। तो उन्होंने, शंकर के भक्त थे मृकंड ऋषि, और बोले पिताजी आप तो मुझे सिखा रहे हैं मृत्युंजय मंत्र, शंकर के प्रिय मृत्यु को जय कर जाते ना, वो है वो तो है, लेकिन ये सच में वही शंकर जी ने खुद बताया कि तेरा आयु फिक्स कर दिया, डेट एक्सपायरी डेट उन्होंने फिक्स किए, मैं क्या करूँ, वो तो जाएगा तुम, नहीं 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 मैं तो करूँगा, आप तो उनसे पिताजी से मृत्युंजय मंत्र ले करके अब जो कुछ ही दिन बाकी था मरने के लिए, वो शंकर जी के पास जाकर बैठ गया, अब बैठ करके ऐसे जप किया, और जो डेट आया जमराज ने पुलिस को भेजे, वारंट नोटिस दे, नोटिस इशू करके प्रिंटआउट देकर साथ में भेजे, वो आए आकर बुलाया, बोले बाहर आओ, क्योंकि शंकर जी का घर में तो नहीं जा सकते, वो घर के अंदर बैठा था मंदिर के अंदर, बोले आओ बाहर आओ, जितने बोले बाहर नहीं, डर गया उनको देख कर, जमराज को पुलिस को देख कर डर गया, और निकट में जाकर बैठा, शिवलिंग था उस निकट जाकर, छोटा बालक था 6 साल का बेटा, बिल्कुल पास में जाकर देख रहा था, डर गया और ज़्यादा से वो चिल्ला उल्ला कर, अरे आकर जमराज से कंप्लेन के आ नहीं रहा है, और उनके पास बैठा है, हमको कोई मार मिल ना गया, हम नहीं गए, आप जाओ उनके भाई संभालो, आप उनके मित्र हो, फोन करो, जमराज ने फोन किए शिव जी भाई, फोन नहीं उठाए, बिजी गया एंगेज। तो उन्होंने फिर हाय बोले भाई दी, ये कैसे हो सकता है, हम मदद करना चाहिए, ये कैसे सामने रखते हैं भाई, वो नियम है, मैं कौन सा मनमानी थड़माना कर रहा हूँ, मालिक के वो भी काम करते हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, अब उनका डेट फिक्स है, एक्सपायर डेट कैसे नहीं भेज रहे हैं, छोड़ रहे हैं उसको। तो वो अपने गाड़ी चढ़ करके आए, भाई साहब में चढ़ करके आए, आ करके सामने गुरबाड़ी गाड़ी पार किए, उसको बोला बोले आ जाओ बिल्कुल गेट के अंदर घुसने के लिए गए, बोले मैं तो जा सकता हूँ, आप जैसे अंदर घुसे जमराज को देखा मार्कंडेय ने, और शिवलिंग बिल्कुल आलिंगन कर लिया, आलिंगन करके डर के मारे व्याकुल होकर के ऐसे मंत्र जब के प्रार्थना किया, जमराज बोले ये नहीं छोड़ चलेगा, नहाना रोना धोना चलेगा नहीं, डेट फिक्स है इसे थोड़ी, वो जैसे गया वो शंकर जी संभाल नहीं पाए, वो आउट ऑफ दी वे जा करके लिंग को फाड़ करके निकले, और त्रिशूल को गेट आउट हो गया, मार दूंगा तुझे, जमराज बोले आप जाओ बाहर अभी, तेरा इतने साहस कर मेरे घर के घुस करके, तो जमराज भागे बोले बूढ़ा मारना दे, अब गन उठाकर भाग रहा मेरे, जमराज जी भागे बोले जाके कंप्लेन करता हूँ अभी सर के पास, रिजाइन करता हूँ, ये काम धाम नहीं चलेगा, आप ही ऐसा कर रहे हैं, आप भी डिपार्टमेंट हेड, मैं भी डिपार्टमेंट हेड, छुट्टी क्या चल रहा भाई। तो इस प्रकार से तो भगवान ने फिर संभाले, ये बात बड़ी लंबी है। तो इस प्रकार से मृकंड ऋषि ने उनके बेटा को बताया था, मतलब उससे मार्कंडे ऋषि जाकर कुछ काम किए तो मृत्यु को टाल दिए। ऐसे टाला जा सकता उपाय करो, ऐसे उपाय ना करके आप जो है उसको मार के तो मृत्यु टाला जा सकता, ये कोई बात नहीं होता, ऐसे नहीं हो सकता। तो कंस फिर भी नहीं माना ऐसे समझाने के लिए। तो उनको बोले देखो तुम मृत्यु को डरते क्यों है? बोले मरना तो निश्चित है, जो देहधारी देह धारण किए देह मरा वो मरेगा ही, और उसमें डरने की बात नहीं। बोले क्यों नहीं डरूंगा? बोले ये पुराना देह जाएगा नया देह मिलेगा, नया देह मिलेगा देह जाएगा कुछ मिलेगा ना कुछ। अरे बोले इसे कभी नहीं हो सकता। तो वो बड़े फिलोसफी समझा रहे हैं, बोलते हैं देखो सभी के लिए यही सत्य है। जैसे एक उदाहरण, आप लोग अधिकांश किराया मकान में रहते हैं ना, कोई किराया मकान में रहते हैं ना, घर में जो जॉब करते हैं, जब किराया मकान में रहता है मकान मालिक कोई नोटिस दिया कि भाई हमें काम है छोड़ना पड़ेगा, भाई आपको पहले डॉक्यूमेंट साइन के भाई 2 महीना की 3 महीना पहले जब छुड़ाने के लिए नोटिस दे, और नोटिस आ गया उसका भाई आपने देखो अब जब तक आपने दूसरा मकान किराया का मकान ठीक नहीं किया उसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते, भले वो 15 दिन मोहलत मांगेंगे भाई हमें अभी ठीक करो, क्योंकि जब तक दूसरे जगह ठीक नहीं करते उसे छोड़ नहीं सकते। और एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम चलते हैं, प्रत्येक प्राणी हमारा 2 ही पैर तो है ना, 2 ही पैर है, जब चलते हैं पहले 1 पैर उठता है, दाहिने पैर सम का पहले उठता है, उठ करके वो पैर जब धरती के ऊपर जम नहीं जाता तो बाएं पैर उठेगा ना, वो शून्य में है दूसरा पैर कभी उठ ही नहीं सकता, गिरेगा तूने जब तक वो टच कर ले तो अपना स्थान जमा ले फिर वो छोड़ेगा। बोले ही बात है, ये शरीर छोड़ने से पहले दूसरा शरीर विजर हो जाता है, हाँ दूसरे मकान तय करके फिर इस मकान छोड़ना पड़ता है, ऐसे नहीं होता, पहले वो नया मकान पहले तैयार कर रेडी हो जाता है। बोले वो तू देह जो छोड़ता है दूसरे देह तेरे लिए रेडी करके उसको चाबी हाथ में लेकर फिर ट्रांसफर करके फिर छोड़ता है, ऐसे थोड़ी बोले ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बोले यही देह का धारण और देह का त्याग, यही तो जन्म और मृत्यु हो क्या, देह प्राप्ति जन्म है, देह त्याग मृत्यु है, उसी को कहते हैं। तो वो तो होना ही है, और आपको नए मिलेगा, नए मकान मिलेगा तो खुश होना चाहिए, उसमें और सुख भोगेगा। लेकिन नया मकान से पहले तो मकान में छेद कर दो ऊपर में, वो बारिश से सीधे नारे पानी गिरेगा, क्या छेद कर दो ना, ये पाप कर रहा है, ये मरने से पहले इतने भयानक पाप करोगे तो जो शरीर मिलेगा उसमें कितने दुख मिलेगा, यह लोक परलोक दोनों ही जाएगा तेरा। तो कंस को समझ नहीं आ रहा, तो बोले ये क्या बात रहा है, ये तो सब फिलोसफी बता रहे हैं वसुदेव जी ने, वो बोले शायद समझ जाए, वो कहा कि समझे भाई, वो तो देख रहा था तो क्या बक रहे हैं। बोले मुझे दुख हो रहा है, बोले दुख हो रहा है ये तो तेरे अज्ञानता है। बोले जैसे बोले जीवित शरीर में कई बार देह त्याग करना पड़ता है। बोले कैसे? बोले अभी अब गीता में भगवान कहते ना, क्या श्लोक है वो, दही नस्मिन जथा देहे कुमारम जौवनम जरा। बोले इस देह में भी, इस शरीर में, इस नाम इस शरीर में भी तू 20 साल पहले का फाल्गुन फोटो देखो तो देखे कैसे शरीर था, और अभी कैसे शरीर है ना, नहीं चेंज, हाँ पहले चश्मा नहीं लगा था, चश्मा लगा है, पहले साइज और वेट जो भी था रंग रूप सब बदल गया ना, नहीं जो इसी देह में ही बदलता रहता है, वो फाइनल एक्सचेंज बदल जाना वही तो शरीर देते। बोले वो की बात छोड़ो, इतने देर के नहीं, बोले कभी कभी 1 दिन में कई बार शरीर बदल लेते। बोले वो कैसे? बोले सपना देखते हैं अनुविष्ट होकर, कभी कभी सपना, बोले दिन में भी सपना देखते हैं, कोई कोई भोग सुख के लिए, कोई कोई बड़े आदमी का ऐश्वर्य को देखा, उनके मकान उनके घोड़े उनके गाड़ी उनके सब देख करके सोच गया बैठ कर, मेरा आगे ऐसा होता, मैं ये शरीर होता, ये सर घर मेरा होता है, गाड़ी मेरा होता, ये पत्नी मेरे होती, ये वो जो सोच रहा ना, तब इस शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में जा चुका है, मनोमय शरीर वो दूसरे शरीर में था, जब सोच छोटे सपना टूट जाता है, अरे फिर मैं ही हूँ यार, हाँ भिखारी भी कभी अपने मन से कभी राजा बन जाता है फिर भिखारी हो जाता है। बोले वो भी वही शरीर ऐसे ही है। बोले इसे कैसे? बोले उसको दर्शन से उदाहरण समझते हैं। बोले देखो कभी कभी सूर्य उठते हैं, जब सन जग जाते हैं, तो कभी भी तरल पदार्थ हो, कोई तालाब हो, नदी हो, कोई तैल पात्र हो, कोई जल पात्र हो, कहीं पर उनका रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन आता है, सूर्य देखते हैं, तो कभी कभी हवा चलता है तो पानी हिलता है, और पानी हिलने से आपको दिखाई पड़ता है सूर्य इतने लंबा हो जाते हैं, फिर छोटे हो जाते हैं, इसे साइज देखता ना चंद्रमा से जो छाई पड़ता है कि कोई अपना छाई पेड़ पौधे छाई ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होना जिस जो छाया का ऐसे ऐसे बढ़ना छोटना जो तरंग वो पेड़ का कि जो काया का कि सूर्य चंद्र का होता है क्या, उसमें कोई हिल हाल नहीं, कोई कंपन नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, लेकिन इधर तो बिल्कुल दिखता है। दिखता कैसे? वो कंपन उसी में नहीं है, कंपन हो रहा है पानी में, वो माध्यम है। अब आपको पानी में देखता है, ऊपर से देखो कुछ नहीं है, पेड़ को देखो कुछ नहीं हो, पानी में देखो पेड़ हिल रहा है, उल्टा देखेगा फिर हिलेगा भी। बोले ये सारे माध्यम वही है, इसी प्रकार है। बोले हम जीवात्मा अपना परिचय छोड़ करके देह को ही परिचय माना और मन को उसी में लगा दिया, इसी कारण से इसे प्रकार के होता है दुख ये सब, नहीं तो इसे कुछ नहीं है, अब क्यों इसे। लेकिन ये सारे फिलोसफी समझाते समझाते वसुदेव हद हो गया और देखे कि कुछ काम नहीं कर रहा, कोई ज्ञान बल कौशल। अभी सोचे वसुदेव जी, बोले क्या किया जाए। हम देखते हैं संसार में विपत्ति आता है, विपत्ति आता है तो उसके प्रतिकार भी साथ में होता है, जितने बड़े विपद क्यों ना हो, विपत्ति हो उसका प्रतिकार भी है, उसका सामना करने के लिए बीमारी होता है, बीमारी का इलाज भी है। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो को विपद के समय इसे बीमारी के समय इलाज करना चाहिए सामना करने के लिए, वो छोड़कर बैठकर रोने से क्या होगा, उपाय करो। तो देखा कि उस बात कुछ काम नहीं कर रहा है, सारे करके देख लिया, समझाया, ज्ञान वाहन जब दे दिया, कितने प्रशंसा किया, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो वो वसुदेव जी ने मन में सोचे, बोले देखो मैं अभी एक पति हूँ, पत्नी अभी मंगलसूत्र बांधी हुई सामने बैठी हुई, बिल्कुल गला काटने के लिए तैयार है, मैं हाथ पकड़ा हूँ, अगर किसी प्रकार से पत्नी की मतलब किसी प्रकार से उनके प्राण बचा दूँ बाद में देखा जाएगा। तो मन में सोचे देखो जो आकाशवाणी हुआ था वो तो उनके बेटे के लिए हुआ था, वो बेटा को द्वारा मरेगा, बेटा क्या पता होगा कि मैं 17 पत्नी शादी कर चुका हूँ, अभी किसी का बेटा बेटा हुआ ही नहीं, उसका होगा क्या गारंटी है? गारंटी है कि उनका अनाउंसमेंट हुआ, अरे होगा तब देखा जाएगा, बेटा की बेटी होगा क्या पता। अगर सोचते हैं बेटा बेटी होने से पहले कंस तब तक एक्सपायर ना हो जाए, कंस बचकर रहेगा, उनको गारंटी थोड़ी है, किसी का गारंटी नहीं है। काल का विश्वास बोलते निश्वास है ना ही विश्वास, अभी अगले सांस तेरा आएगा कि जाएगा उसके भरोसा मत करो। तो ये क्या है, तो क्यों ना मैंने बात कर दूं, जब ये उनके देवकी के लिए तो चिंता करके मन में विचार करके कैसे बचाऊं, तो अपना मूड बदल दिए। बोले शिवराज जी एक बात पूछूं ना, क्या बहुत उपदेश करता रहता है ना, नहीं नहीं बात ये पूछता हूँ, आपको देवकी भी डरते हैं? देवकी क्यों डरो, इससे क्या करेगा मेरे भाई, नहीं उससे क्या मजा डर है, कोई डर नहीं उससे, उससे डर नहीं ना, बिल्कुल डर नहीं उससे, तो फिर क्यों उनको आए तो लाल लेकर के, अरे सुना नहीं उनके बेटा को डर, अरे उनका बेटा तो हुआ नहीं होने वाला है ना, मैं वचन देता हूँ जो भी संतान होगा चाहे बेटा हो बेटी हो चाहे कुछ भी हो कि दोनों मिक्स हो मैं आपको दे दूंगा जो भी हो मैं आपका हवाले कर दूंगा। तब कंस का हाथ ढीला पड़ा, बोला बात तो सही है यार, हम मैं इतने बड़े होनहार ये क्यों लड़की को मारूं, ये बहन को क्यों मारूं, वो बेटे की तो डर है, वो बेटे को मुझे दे देगा उनको मारने में, अभी उनको देवकी को मार दूं कम से कम चाचा से मेरा लड़ाई हो जाए, उनके पिताजी उनके है ना देवक जी, बोले उनके साथ मेरा द्रोह होगा, शत्रुता होगा, कई लोगों के साथ शत्रुता मोल लेगा, ये मन में कम से सोच रहा था। इसी समय क्या घटना सीन देखिए क्या हो रहा है, बिल्कुल आपने मन में चला जाए सीन, बिल्कुल मथुरा के रयाल रोड बहुत ही चौड़ी सड़क मतलब 4 लेन वाला कि 6 लेन वाला जो भी हो, और उसमें दोनों तरफ से लाखों लाख भीड़ सब खड़े हैं, उसके बिल्कुल बीच में दिन दोपहर में ये घटना चल रहा है, आकाशवाणी हो गया सभी सुने हैं, और कंस बिल्कुल पकड़ मारने जा रहा है, जो सारे पब्लिक की सबसे स्नेह की पात्री, सब जिसको पसंद करते हैं चाहते हैं उनको मर्डर करने जा रहा है। तो इस समय में तो जितने सारे बड़े बड़े बूढ़े लोग थे तो दौड़ आए, अरे रोको रोको इसे दुर्बुद्धि मत करो, अरे इसे मत करो। तो कुछ बुद्ध ने बोले कि वो जानते हैं कंस को, बोले अरे कंस दुर्बुद्धि ये देवता अगर कोई कहे मानते, देवता तेरे मित्र है कभी हुए, तेरे परम शत्रु देवता है ना है, बोले कोई शत्रु को तेरे मारने का फेर पता चल जाए वो तुझे बता देगा ना छिपा के रखेगा, बताओ इतने तो समझ होना चाहिए, तो बड़े बुद्धिमान हो। देवता तेरे चीर शत्रु है, तो उनको मार पीट कर भगाया, उनका समन छीन कर लाया, वो तो ताक में पढ़े तुझे मारने के लिए। हाँ पढ़े तो हैं, उनको अगर कैसे भी कैसे पता चल जाए उनके मारने का काट ये दवाई से इस प्रकार मरेगा, वो आपको बताएंगे ना, छिपा के रखेंगे? कब से आपके मित्र हो गए देवता? कंस ने सोचा बात तो सही है, ये देवता तो ऐसे नहीं बोलने चाहिए मुझे। अरे तू क्यों सोच रहा है, अरे बोल करके उन बिचारे को क्यों कष्ट देंगे, मरवाएंगे वो, तो छिपा के रखेंगे तुझे मारने के लिए प्रयास करेंगे, वो कोई भी नहीं करेगा, वो कैसे करेंगे? बात तो सही है, वो कैसे करते? तो इसलिए ये मत समझो देवता लोग नहीं कहे, कोई भूत प्रेत बल दिया होगा आपको, आपके बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए, और क्या, आपके बुद्धि दिमाग खराब करने के लिए को बोल दिया होगा, ऐसा मत करो, ऐसे महापाप है, ऐसा मत करो, हमको बड़े दुख लग रहा है। लेकिन कंस सोचा तो सही, बोला ना भूत प्रेत मुझे क्यों डरेंगे, मैं क्या कम हूं ना, मैं भूत प्रेत के राजा हूं, असुर हूं, मैंने हमें देवता को जानता हूँ, वो छिप कर कहते होंगे, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसे हुआ होगा तब नहीं मरना। तब कुछ तरुण थे जो उनके वसुदेव के मित्र थे, और जो अभी सैन्य संग थे, जो वीर पुरुष थे, जादव वीर, वो तो जो हाथ में पड़ा भाला तलवार मुदगर वो लेके दौड़ पड़े लड़ाई करने के लिए। बोले कैसे मर्डर करूंगे, ये कैसे इतने महा घोर अन्याय हम नहीं सहन कर सकते। वो लोग दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते आ रहे हैं, गाली गुलस दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इस पर करो को रोको, इसे मत करो मत करो। कंस एक बार मोड़ कर देख भी लिया, अच्छा मेरे विरुद्ध में इतने हैं, वो होना चाहिए, तेरे को अच्छा लोग थोड़ी है तेरे से बढ़ करेंगे, जो भी राजभक्त होंगे वो तो विरोध करेंगे। तो देख लिया, लेकिन फिर भी वो जानते थे, वसुदेव भी समझ रहे थे कि मुझे इतने फॉलोअर भले हजारों लोग दौड़ कर आए, लेकिन कंस अकेला भारी पड़ेगा, सब मरेंगे जरूर, कोई नहीं बचा सकता उसको, ये महाबली है, ये तो अभी उनका हार्ट बीटिंग बढ़ गया करके संभला है, नहीं तो वो तो अभी कभी मार दिया होता। लेकिन वही एक ही काम कर गया कि तुम भयभीत क्यों हो रहे हो, इतने डर के मारे अपने अबड़ा दुर्बड़ा क्यों मार रहे, जो बेटे की तो डर रहा है, संतान को मैं संतान आपको दे दूंगा, पक्का वचन, अब मुझे नहीं जानते। कंस जानता था वसुदेव परम सत्यवादी, ये भी उनको विश्वास था, तो बोला कि ठीक है। और इतने में क्या हुआ था, अभी ये चल रहा था, कुछ लड़के तो देखे कि ये कंस मान नहीं रहा है, तो दौड़ करके घोड़ा में छूट करके चले गए थे राजभवन में। राजभवन जा करके उग्रसेन को वसुदेव के इन्फॉर्म किया कंस मर्डर कर रहा है, जबकि कहे बहुत दौड़ कर रहा है, कैसे महाराज उग्रसेन भी निकल आए थे अपने बड़ी गार्ड को साथ में लेकर के, वो पूरे एक्शन के लिए आ रहे थे, आ रहे थे गेट पर आ चुके थे, इतने में फिर दूत गया महाराज क्षमा करे, वो छोड़ दिए जिबरा, छोड़ दिया उनको, अब वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो गए नहीं, नहीं तो वो तो गुस्से में आ रहे थे एक्शन लेने के, गेट पर खड़े थे। वहाँ हुआ क्या, वसुदेव जी ने जो सत्य प्रतिज्ञा की कि मैं जो भी बेटा होगा आपको दे दूंगा, आप जो करना है करो, तब तो ना ना तब तो कोई बात नहीं, तो देवकी की चोटी छोड़ दिया, चोटी छोड़ दिया, तलवार म्यान में डाला, मोड़ करके देखा सारे पब्लिक को, जो पब्लिक ने कर रहे थे एक क्रोध में हुंकार करके, देख लूंगा मन में भाव, देख लूंगा आपको भी, ऐसे मन में देखकर हुंकार करके रथ से उतला, गाड़ी में नहीं गया, पैदल में गया, वो ड्राइवर चुपचाप पीछे बैठा था, डिक्की में आकर गाड़ी चलाए रास्ता दे दिए, सब गए तो सब साइलेंट, अब मंत्र पंत्र पाठ नहीं, जो फूल फूल लेक रहे थे हल्दी फेंकने के लिए कुछ नहीं हुआ, सस्ती वाचन फूल फेंकना कुछ नहीं, बड़े सीरियस मामला हो गया। अब जैसे तैसे घर पहुंचे यार मरते मरते बचे, वो घर गए, कंस पैदल में आ रहा था, आ चुका था, तब महाराज उग्रसेन और उनके और भी उनके अंगरखी कुछ खड़े थे, महाराज उग्रसेन डर के कांप रहे थे, ऐसा ऐसा कर्म कर रहा था आपने, आज सुबह बहन को विदाई करते समय उसको गला काटने जा रहा था, खड़गे उठाया, कैसे ऐसे कर रहा था, बड़े क्रोध से जर्जर हो रहे थे, और इसी समय कंस आ रहा था गेट के सामने, वो देख लिए बेटा पुत्र को देख लिए उग्रसेन, बोले अरे तू निलज्जा, मैंने सुना तू देवकी के ऊपर तो खड़गा उठाया उसको मारने के लिए, इतना निलज्ज हो गया, ऐसे करके जब बोले तो कंस देखा पिताजी की ओर, ये सुना है ना नहीं कि क्यों उनके बेटा मुझे मारेगा, ये भी सुना था ना नहीं, केवल ये सुन लिया मैं मारने के लिए उद्यत हुआ था, ये भी सुना था ना नहीं कि आनंद सुन हुआ कि मुझे भी उनके बेटा मारेगा, ये बोल दिया उनके सामने। तो महाराज उग्रसेन बोले अरे मूर्ख तू क्या अमर है, तू नहीं मरेगा क्या? हाँ, अनंत सुधा मरेगा तो सब तो मरेंगे, तू ही मरेगा, उसमें क्या है? अरे इतना नहीं, बहुत सारे जादव तरुण मेरे अगेंस्ट हो गए थे अस्त्र लेकर दौड़। अरे वो तो धन्यवाद के पात्र है, तू इतने महापाप अन्याय अपकर्म करोगे, वो तो कम से कम रोकने के विरोध करने के लिए सत्य को पाप को विरोध करना तो मानविकता है, वो आए थे, धन्यवाद के पात्र है। क्या आप उनके सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसे लाल आंखें उनके पिताजी को देखा, सुन लो, मैं मेरे शत्रु को और शत्रु के सपोर्टर किसी को नहीं छोड़ूंगा, कह करके चल दिया। ऐसे पिताजी को साइड करके चल दिया। वृद्ध उग्रसेन वो क्या करेंगे, उनके बड़ा बेटा है। ऐसे उदंड हुआ, अब हाथ ऐसे करके हाथ मल लिए, कुलांगा, केवल इतना ही कह पाए, रे कुलांगा, कुल के कलंक तुम्हें। और उनके मंत्री लोग उनको लेकर गए। उसी दिन से पिता और पुत्र का बातचीत बंद। कैसे हो? उस दिन से बंद, कभी सामना सामने बाप के सामने नहीं जाता था, कि वो भी उनके सामने बात ही नहीं करते थे। तो कंस घर में वापस आया, आ करके बहुत भार बढ़ गया था उनका, हेलो, सोच रहा था क्या करें, भाई मरने का नोटिस मिल चुका था ना, मरना चाहिए। हम लोग सभी भी ऐसे ही है, मृत्यु भय में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मन का सियो हो जाता है, तो क्या करूं? अब उनका आठवां घर में कब होगा, तब तक तो उनका काट रह रहा है, मरूंगा इसी डेट में बिल्कुल। जाकर घर में कैलेंडर को सामने किया, डेट कैलेंडर रेडी करके रखा, और सीधा अंतपुर में चला गया, अपने पत्नियों के पास चला गया। जा करके अभी बहुत उन्होंने विस्मित था, किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहता था। बोला जब देवकी मेरा सबसे नियर एंड डियर था, अब पता नहीं उनके बेटा मेरा काल बनेगा, किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। जो कंस कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले आपने स्वजन परिजन का, आपने संबंधियों का इतने प्रेम करता, उनके इतने ध्यान देता था, आप सारे प्रेम उबड़ गया। असुरों का गुण नहीं होता, आपने स्वार्थ में हिस्सा आने से कुछ नहीं छोड़ेगा, सबके ऊपर प्रेम उड़ गया। उड़ करके जदुवंश के ऊपर तो क्रोध आ रहा था उन्हें, और जा करके अपने पत्नी को विश्वास करने में डाउट हो रहा था उन्हें, इसलिए चला गया सदैव पत्नी के रूम में। दो पत्नी दो खड़े हो गए, हैं पतिदेव आए करके, आकर खुद अपने मुंह से अनाउंस किया, अभी आकाशवाणी हुआ कि देवकी के आठवां संतान मुझे मार देगा। दोनों पत्नी मुंह में हाथ दे करके, इस अमंगल बात आप करें, आपको पता नहीं? और वो दासी तो दौड़ कर आते, इसे कुछ बता रही थी, मैं थप्पड़ मारी उसे, चुप, ऐसी बात करते हैं? वो दासी तो सत्य बता रहा था, थप्पड़ के मारा उसको, तो सही बात है क्या? ऐसे ही ना, तो अब देवकी को छोड़ दिए, पति जैसे पत्नी भी तैसा, सारे जड़ तो वही है, उन्हीं के बेटा आपको मारेगा, उनको तो छोड़ना नहीं चाहिए था। वो भी कंस को उसका कंस वाला, अरे दुर्बुद्धि कहीं के, छोड़ क्यों दिया? बोले मैं अगर देवकी को मार देता, मुझे वसुदेव समझाया, मेरी बुद्धि आया कि देवकी दूसरा कोई जन्म ले लेता, कोई जन्म तो होता है, तुरंत शरीर जन्म लेता है, और फिर मुझे एड्रेस पता नहीं चलेगा, अब तो मेरे एड्रेस पता है, यही जन्म होगा, मैं मार सकता हूँ, दूसरे का जन्म ले लेता बिना पता रहे, फिर आकर मारेगा, तो अब तो मैं बुद्धि ठिकाना छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया वसुदेव जी ने, थैंक यू टू यू, अब तो मेरे हाथ में, नहीं तो कहाँ होता, क्या पता, हाँ मारता तो सही, और किस रूप में था कि जन्म कहाँ हो जाता, मार देता तू तो? अरे आपका कितने दूरदृष्टि है, कितने दूरदृष्टि है। तब तो ऐसे गोल करके कंस दोनों पत्नियों के आंख को और गौर से देख रहा था कि वो क्या सोच रहे हैं, वाजो किसी को विश्वास नहीं करना चाहता था, अपने पत्नियों की दृष्टि देखते, वो उनके मन में क्या चल रहा है जानना चाहता था। तो देख करके वो लोग तो सचमुच कंस की पत्नी थे, तो बोल रहे थे अब कुछ करना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़ी रानी अस्ति ने बोला कि हाँ बहुत कलंक होता, आप जैसे वीर पुरुष एक बहन के मानना तो कलंक होता, लेकिन उनके पुत्रों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ना छोड़ना ही नहीं चाहिए, इसके लिए तो मैं छोड़ दिया उसको, उसको नहीं छोड़ दिया उसको बेटा को मारूंगा, और किसी के शत्रु निर्जन्म जन्मजात शिशु को मार देने में कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको मारने में कितने अपमान होता, उसको मारने में क्या जन्म होता, कोई जीता है मरता है इसे। तुम्हारा हाँ बहुत अच्छा है ना, देखो आपका भी कुछ करते भी ना बताइए, हमारे मांग के सिंदूर को बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए आपके लिए तैयार है, तैयार है ना, बताइए आदेश करें, क्या काम है दासी का, क्या करना है ना। आप दोनों को ऐसे रोल करना पड़ेगा, आना जाना रहना पड़ेगा वसुदेव के यहाँ पे, और देवकी के साथ जैसे पहले आपका संबंध था, क्या संबंध होता है ननंद और भाभी ननंद ना, भाभी ननंद का संबंध उसको बिल्कुल बरकरार रखना है। बल्कि ये बात बोल देना कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ करके, इसे नहीं ऐसे करते वो इतने फ्रेंडशिप लगाना, बिल्कुल मुझे खबर देते रहना, और खबरदार वसुदेव देवकी को कोई उनके घर वाले किसी ने पता चले, ऐसे गिफ्ट आइटम लेते जाना और कोई चाहे इतने उनको करते रहना, और बिल्कुल नोट करना कि कब देवकी रजसुड़ा हो रहा है, कब प्रेग्नेंट हो रहा है, कब उनका गर्भ हो रहा है, सारे नोटिफिकेशन मुझे देते रहना, क्योंकि मेरा तो वही काल है, एक एक करके जन्म हुआ कि मैं तो मारा ना हो, हमारा ऊपर छोड़ दिया निश्चिंत, ये काम तो हम कर ही लेंगे। और उसी दिन से दोनों रानी अपना बिल्कुल ड्रामा शुरू कर दिए, जानते वो ऐसे छोटी रानी प्राप्ति तो देवकी और बाकी रानियों के साथ इतने घुल मिल गई, कोई उनको समझ नहीं पा रहे थे कि उनका कपटता इसके अंदर है, उनका इतने अपनापन आ लिया था। जाकर एक बार बोली भी देवकी के सामने, बोले देवकी क्या बताऊं, तुम्हारे भाई बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, बहुत गानी कर रहे हैं, हे मैं भी समझती हूँ उनको, मैं भी देखती हूँ कि उनका अंदर बाहर कुछ नहीं है, वो क्रोध करते हैं बोल देते हैं सामने सामने, गुस्सा प्रकट, वो जो क्रोध करते हैं वो तो अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, क्रोध है ही ऐसा, क्रोध के समय में कोई अच्छा बुरा समझ नहीं पाता, कुछ भी करने के लिए अपकर्म करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में बहुत ग्लानी करते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं, दुख करते हैं। मैंने उनको बताया, बोले चलो जा करके मिल लेते हैं, वो आते नहीं, इतने उनको खराब लगता है, इतने अपमान बोध, कैसे देवकी से मुंह दिखाऊं, मैं इसे गलत काम उनके गलत व्यवहार किया, इसलिए बहुत पश्चाताप कर रहे हैं देवकी, अब तुम क्या बताऊं, सच बताता हूं, क्रोधी तो हैं, क्रोध जब होता है तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बाद में खुद पश्चाताप कर रहे हैं। तो इस बात को सुनकर देवकी माँ बिल्कुल निष्कपट भाव से बोलने लगी, मैं जानती हूँ भाभी भैया को, मैं जानती हूँ आपके शादी होने से पहले मुझे पता, मुझे तो वो इतने प्यार करते हैं, इतने मुझे स्नेह करते हैं, सगे बहन से ज़्यादा मुझे स्नेह करते हैं, और मैं जानती हूँ भाई साहब को, लेकिन क्या करूँ, कुछ विधु के खिलाना है, वो तो इस प्रकार से क्रोध में करता, लेकिन उनको बताना मेरे मन में कुछ है नहीं, वो तो जो हो गया हो गया, ऐसे कोई बात नहीं, वो आ सकते हैं तो इतना उनके साथ मित्रता करके, और कभी ले जा रहे थे, कंस को पता चल रहा था तो उनको को दोहत जानते ना, जो प्रेग्नेंट होने के बाद देते हैं खाने पीने के लिए, ऐसे सब सप्लाई दो, ये करो, उदासी के ले जाओ एक्सपर्ट, सारे व्यवस्था ठीक ठाक कर रहे थे। सबसे पहले उसके छोटी रानी प्राप्ति ने कंस को समाचार दिया कि जी दूसरा महीना चल रहा है, कंस तुरंत कैलेंडर से राउंड अप किया, वो डेट को गिनती शुरू किया, गिनती किया, बिल्कुल रेडी करता धीरे धीरे करके, और बड़ा और सतर्क रहो, कहीं ऐसा ना, क्या डर है ना हो बस देव कोई डर है ना, वो जन्म आपने बेटा को कैसे मारने के लिए दे देगा, हो ना हो चुपचाप वो अपने पति को लेकर भागना जाए कहीं, अगर कहीं राज्य छोड़ के चला गया तो कहीं फोन किसी बातचीत कर रहा है, मेल किसी कर रहा है, देखते रहना, फोन मेल तभी था नहीं, मतलब किसी संबंध स्थापित करता होगा, कहीं चला ना जाए, बिल्कुल देखते रहना उसको, वो सब करते रहना। तो इसे सतर्क दृष्टि रख रहा था, और पत्नियों के ऊपर इस प्रकार आदेश दे करके आ करके आपने ऑफिस में आकर बैठा, ऑफिस में बैठ करके आपने जो मित्र मंडली जो गुंडा पार्टी है उनको बुलाकर कंसल्ट किया, और उसी दिन मंत्री पद तीन मंत्री बना दिया, पीठ पोटिक असिलोम, वो महा असुरी प्रवृत्ति के उनके मित्र थे असुर, उनको जो लग रहा था उन्हीं को मिनिस्टर बना दिया, और बड़े बड़े पदाधिकारी जब उनके गवर्नमेंट में सरकार में यादव सरकार उग्रसेन के राज्य में जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे बिना कारण से नाममात्र कारण से पदच्युत कर दिया गया, उनको निकाल दिया। और वो महासेनापति था तो बड़े बड़े सेनाध्यक्ष जो बड़े बड़े पोस्ट पर थे उनको भी निकाल देता है, किसी को निकाल दिया किसी को पदच्युत किया, इसी से बहुत चेंज चांज किया प्रशासन में। जहाँ तक अपना चल रहा था पावर वहाँ तक किया, जहाँ तक अपना नहीं चल रहा था प्रयास कर रहा था। और सारे उनको बुला करके मीटिंग करके बोला, देखो आप क्या सच रहे हैं, हाँ युवराज हम आपके ही हैं, अगर किसी का बात मानते हैं तो आपके कारण मानते हैं, हम आपके ही हैं हमेशा ना। देखो खबरदार, मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं है, ऐसे समय आ सकता है बहुत जल्दी कि डैडी के सामने हमारा भी विरोध हो सकता है। हाँ पापा का सामने राजद्रोह करने के लिए तैयार है, हम आपके ही हैं, राज्य आपका है, राजा आपका है, हम आपके प्रजा है, हमको क्या, हम और किसी को नहीं जानते, बोला शाबाश। ऐसे मनोभाव जो हैं उनको अपना इकट्ठा करो और जो राजभक्त हैं उनको नोट आउट करो, मुझे बताना, उनको टेक केयर करना, और टेक केयर करना उसे निकाल रहा था। और जिसको बिना कारण से इतने बड़ी ईमानदार बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग जो से उनको पोस्ट से निकाल देगा, और मान नहीं रहे, युवराज निकाल दिए, युवराज तो जबरदस्ती बन गया था, सेनापति था, लेकिन अब वो लोग जाकर क्या करेंगे, जा कर उनके पहुंच महाराज उग्रसेन के पास जाते थे, उग्रसेन तो और कुछ बोल नहीं पाते थे, उग्रसेन देख रहे थे कि धीरे धीरे राजसत्ता पूरे प्रशासन कंस के हाथ में जा रहा है, वो अपने इतने कायदा करके सारे को सारे पटा रहा है, लोग देख करके धमकी दे कर कुछ करके पूरे प्रशासन की सत्ता उनके हाथ से जा रहा है, और उग्रसेन जान करके समझ करके कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, क्या कर पाए, तो समझ बूझ करके चुप बैठते थे, और धीरे धीरे सत्ता उनके हाथ में चला जा रहा था। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे राजभक्त थे जो ईमानदार थे, वो राजा के कभी नहीं मानते थे, उनको कम से तो लाल आंख से देख लूंगा तुझे, किसी को तो जिसका बल चलता था निकाल देता था, उनके पड़ी काट करता था, लेकिन जो है ही नहीं वो दूसरे डिपार्टमेंट है उनको क्या कर सकता था। तो इस प्रकार से और सेना प्रशासन में बहुत उथल पुथल चल रहा था, सारे डिपार्टमेंट हेड सेनापति और बड़े बड़े पोस्ट के लोग भी बड़े पॉलिटिकल क्रिसिस में थे, ये क्या चल रहा है, महाराज कुछ बोल नहीं रहे, महाराज को बोलने की स्थिति में ही नहीं थे। अरे जो शक्ति हाथ में चला गया, प्रतिरक्षा हाथ में चला, क्या कर सकते, डिफेंस ओवरटेक कर सकता है कभी भी, है ना, मिलिट्री रूल हो जाएगा, कभी हो सकता है, हुआ ही मिलिट्री रूल, है ना, आर्मी टेकओवर कर ले क्या कर ले। तो महाराज इससे बड़े चिंतित थे इस विषय में, तो इस चिंतित इस विषय में धीरे धीरे पॉलिटिकल लाइन में राजभवन में बड़े उथल पुथल भावना चल रहा है, वसुदेव के वहाँ भी बड़े षड्यंत्र चल रहा है, कंस के घर में कंस के मन में चारों तरफ ऐसे प्रकार के प्रतिक्रिया चल रहा है। और धीरे धीरे दो महीना था, अभी देखते देखते 9 महीना के गर्भ होने वाला है। अब जानते हैं 9 महीना में तो डिलीवरी होता ही है, कौन से बिल्कुल कैलेंडर में गिनती कर रहा था और बिल्कुल बोला कि डेट हो रहा है। देखो जब इस स्वयं का भी बेटा नहीं हुआ था, लेकिन इतने पता लगा लिया था उन्होंने, अब उनके दोनों पत्नी को तो बिल्कुल बोला बराबर नज़र रखना, और वो लोग भी बहुत अलर्ट हो चुके थे। अब देखते देखते वो समय हुआ, देवकी का प्रथम डिलीवरी का समय आया, तो अस्थि प्राप्ति दोनों ही कई प्रकार भेंट लेकर जाकर देवकी के बाजू में बैठते, क्योंकि वो तो राजरानी है, बाकी सब दास दासी बाकी वसुदेव के पत्नी भी उनको सम्मान करते थे, भाई भाभी जी आए हैं, तो वो जाकर बोलते देखो देवकी ऐसा करो, बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं, कोई भी नारी का प्रथम अवसर बहुत कष्टदायक होता है, आपके पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम आप संतान प्रसव करने जा रही हो, हमको पता है, खुद नहीं मां हुए अभी तक बताते हैं, हमारा अभिज्ञता है, हमारा अभिज्ञता है बहुत कष्टदायक, लेकिन कोई बात नहीं, हम है अब साथ में, ऐसे क्यों बहुत उनके साथ रह करके समझा देते। वो मानती थी देवकी कि मेरे सबसे बोलते हैं आप ही जब है फिर क्या डर है, तो इसे निरापत्ता करके बिल्कुल रहती थी। और देखते देखते उसी समय भी आया, शुभ समय देख करके कीर्तिमान प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी कुमार के देवकी के गर्भ से पहला पुत्र हुआ। तो पहला पुत्र हुआ तो पूरे वसुदेव राजभवन में, अभी राजा तो राजकुमार थे, पूरे उल्लास खिल गया, क्योंकि अभी तक 17 वाइफ्स थे उनके, किसी के संतान नहीं हुआ था, क्योंकि उनके भाइयों का किसी का नहीं हुआ था, उनके और 9 भाई थे, 10 भाई थे टोटल, सभी ने शादी किए थे, किसी का भी संतान पूरे परिवार में नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम ये 18th पत्नी से एक प्रसव संतान हुआ तो पूरे भवन सुखी हो गया, कोई सुख करने के लिए आया तो वसुदेव जी तुरंत स्टॉप इट, कोई बाजा नहीं बजा सके, कोई कुछ बोल नहीं सके, कोई कुछ हंस नहीं सकता। अरे बेटा हुआ ना, बेटा हुआ, लेकिन वो बेटा के लिए नहीं हुआ, उसका व्यवस्था पहले से फिक्स हुआ है किसके लिए हुआ। अब जैसे दासी आकर बता कुमार आपके पुत्र हुआ है, वसुदेव बिल्कुल बैठे थे, बिल्कुल चिंतामग्न होकर बैठे थे, पुतले के भांति उठे, उठ करके अब चल पड़े, चल पड़े। अब जा करके अब आपने से बहुत दया धर्म बिल्कुल छूट चुके थे, बोले कर्तव्य परायण हो चुके थे, अब जा करके सीधा सब तो आपने पत्नी थे, पत्नी को दास दासी साइड करके सीधा आपने देवकी के पास गए, हाथ बढ़ाती बोले दे दो प्रभु, उसको बचा नहीं जा सकता क्या, इसका तो कोई दोष नहीं है भैया, तो वो आनंद सुन ढुआता 8वां गर्भ के लिए तो प्रथमा नहीं, मेरे वचन है दे दो। और रोने लगी, कैसे दे देगी जन्मदात्री माँ अपने हाथ से मृत्यु गर्भ में कैसे अपने संतान को दे देगी, रोने लगी मेरे लाल कह रोने लगी। वसुदेव कठोर हृदय हो करके उनसे हाथ से ले लिए, अपने संतान को अपने पत्नी के हाथ से उठा के ले लिए, सारे देख रहे हैं, दास दासी दूसरी पत्नियां देख रहे हैं और परिवार के लोग देख रहे हैं, बिल्कुल कठोर हृदय होकर के अपने गोद में इस शिशु को ले करके वो चल पड़े, भवन से बाहर निकले, मथुरा का हाईरोड पकड़ लिए, सारे पब्लिक देख रहे हैं, धन्य है वसुदेव सत्य संधा, कितने सत्य परीक्षा है आपने, आज बेटा हुआ और आज ही ले जा रहे हैं उनको मरवाने के लिए, धन्य है आप, धन्य है वसुदेव, उनका सराहना करते थे लोग, और लगता था क्या सचमुच कंसुन को मार देगा ना छोड़ देगा, हो सकता है वो तो उनका दोषी नहीं है, वो तो उनका शत्रु तो मनांस तो नहीं हुआ था, शायद छोड़ भी सकता है, क्या मार सकता है क्या पता, कुछ लोग संदेह से चलो देखते हैं क्या होता है। और कंस को तो खबर मिल ही चुका था, उनके पत्नी ने आके बता दिए थे ऐसी ऐसी बात है, क्या क्या सारे डिटेल मिला था। तो कंस भी सोच रहा था, अपने ऑफिस में आकर बैठ गया, सोच रहा था अगर वसुदेव नहीं आना चाहते, नहीं आए कोई बात नहीं, अगर मुझे खबर भी भेजेंगे जी कुमार जी कुमार साहब, और आपके भांजा हुआ है कि मैं अभी लेकर आऊँ ना, छठी पूजा करके लेकर आऊँ 6-7 दिन के बाद, आप जैसे बोलें। लेकिन कंस ये नहीं सोच रहा था कि आज ही लेकर आ जाएंगे, ये वो सोच नहीं सकता था, वो बोला मुझे खबर भेजेंगे आएंगे, वो झूठ तो नहीं करेंगे आएंगे, सही सोच रहा था, लेकिन कैमरा में देखा कि वो आ रहे हैं, वो आ ही रहा है वसुदेव लेकर लड़का, और सिक्योरिटी बोला कि सर वो आने वाला, अच्छा ठीक है दरवाजा खुला रखना वो आ जाए। कंस तब बैठ कर सोचने लगा, जो आ ही रहे सचमुच तो क्या करूँगा, कोई बात नहीं वसुदेव मान लिया, बाकायदा सच्चे आदमी है, बिल्कुल सच्चे आदमी है, मैं तो तभी मानता था, मैं तो कभी डाउट किया नहीं था, वो है ही सचमुच सदाचारी सत्यवादी है, कोई बात नहीं ये तो पहला लड़का है, इसका तो मेरा कोई दोष नहीं है, क्यों उसको मारूं, पहला भंजा है रहने दो उसको, तो उसको मैं छोड़ दूंगा, वसुदेव आएंगे मेरे पास आएंगे, मैं उनको छोड़ दूंगा, आप लेकर जाइए तो वसुदेव खुश हो जाएंगे, आपने मन में ही सोच रहा था, सोच रहा था। वसुदेव जी आए, आ करके बिल्कुल गेट खुला मिला उनको, डायरेक्ट कंस के भवन में अपने ऑफिस रूम में चले गए, जाकर बोले युवराज ये आपके प्रथम भागिनेय है, उनके सामने देखा, कंस एक झांकी देख लिया, वो तो सोया हुआ था लड़का, कोई बात नहीं उसको ले जाइए, वो उससे हमारा कोई भाई नहीं होता, उससे तुम ले जाइए वापस, ऐसे बोल करके वसुदेव की आँख को देख रहा था, दोनों आँख से बिल्कुल आँख मिलाकर देख रहा था। वसुदेव जी का मुख विकार से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे मुंह बिल्कुल हाई लोड करके लेकर आए थे मुंडा के दुखी होकर के, ऐसे ही जो उनको वापस कर दिया कंस, तभी दुखी होकर जा रहे थे, कंस ज्यादा परेशान हो गए, मैं उनके लड़का को जीवन दान दिया वो खुशी नहीं हो रहा, इतने दुखी मरवाने के लिए लाया था वो बच गया, वो सुखी होना चाहिए ना, सुखी नहीं हो रहा क्यों, और उस सोच में पड़ गया, और सच में पड़ गया क्यों खुश नहीं हो रहा, और यही बात सोच रहा था बैठ करके। और वसुदेव जी अपने पुत्र को वापस लेकर जा रहे थे, गेट के बाहर पब्लिक लोग मथुरा के जन साधन सर्वसाधारण खड़े थे, वो देख रहे थे। वो जब देखे वसुदेव जी सकुशल अपने बेटे को वापस लाए, बोले वाह 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 जीवराज कंस की जय हो, अच्छा है अच्छे कम से कम है, लेकिन इतना नहीं है बुरा, थोड़ा खराब तो है, थोड़ा क्रोध हो जाने से कोई मानते नहीं, कुछ भी करने लगते हैं मारपीट, लेकिन हृदय है कम से कम, देखो छोड़ दिया, क्यों गलत से मारे हैं, आठवां संतान उनका शत्रु है, ये तो शत्रु नहीं, छोड़ दिया हमने, अच्छा क्या बहुत अच्छा वसुदेव बहुत अच्छा, लेकिन वसुदेव जी को कितने करने पर भी वसुदेव बिल्कुल ऐसी, अरे ये क्या हो गया, मुंह थोड़ा हंसते भी नहीं, आँख खुलते ही, क्या बात है, क्योंकि वसुदेव जी कुछ फर्क, वसुदेव इतने परम विद्वान है नीतिवान है, वो जानते थे कंस का विचार पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए वापस जा रहे थे। जब वापस जा रहे थे नारजी नारायण नारायण नारायण, वो सीधा डाउनलोड हुए कंस के अंदर में, कोई गेट पास जरूरत नहीं, वो तो सीधा वहीं पर डाउनलोड होते हैं, उनके ऐसा गाड़ी है मन की जान है, तो सीधा वहीं डाउनलोड, उनको कोई गेट का पास करके फिर आना पड़ेगा, सर मैं जा सकता हूँ क्या, कुछ नहीं, सीधा उनके ऑफिस में डाउनलोड हो गए नारायण नारायण। वो कंस को पता है भाई करंट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, अब सारे ताज़ा खबर तो उनसे मिलता है। अब देव कंस खड़े हुए, देवर्षि जी आए स्वागत करने के लिए, उनको पूजा करने के लिए, तो कंस को इतने सौभाग्य नहीं देना चाहते थे देवर्षि, बोले अरे कंस रुको रुको रुको, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, पूजा भी नहीं करने दी, उन्हें स्वागत भी नहीं करने दिए, क्या आपको पता है मैं कितने जल्दी में रहता हूँ, आपके प्रति मेरा इतना स्नेह है इसलिए मैं आया, जानते हैं, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मेरे साथ आपका मित्रता ज़्यादा है, सबके साथ मित्रता है तो आपके कारण से मैं आया आपके पास, क्या बात है ना, क्या बताऊँ, बिल्कुल ताज़ा खबर है, क्या ना अभी मैंने आ रहा था वैकुंठ से, और होकर मीटिंग चल रहा था भारी, ना कहा ओ मेरु पर्वत के ऊपर, अच्छा ना सारे देवता थे, ब्रह्मा भी थे नारायण भी थे, भारी मीटिंग चल रहा था, बताओ मैं भी था, मैं भी था अटेंड कर रहा था, ना अच्छा किसी मीटिंग एजेंडा, ना एजेंडा पता है, क्या रेजोल्यूशन हुआ वो भी पता है, बताता हूँ आपको किस बारे मीटिंग हो रहा था, देवताओं की इतनी भारी मीटिंग, केवल आपके बारे में, है मेरे बारे में ना, सारे देवता ब्रह्मा तक नारायण भी थे, एजेंडा टॉपिक आप ही थे, मेरे क्या एजेंडा, मैं क्या था, मैं आपके बद्ध के लिए है, मुझे मारने के लिए, हाँ आपके मारने के लिए, हाँ रिजोल्यूशन पास हो गया, मैं कपिल लेकर आया हूँ, प्रिंट आउट है मेरे पास में कपिल लेकर आया हूँ, डिसीजन हो गया, जब तालक बताया सब डिसाइड हो गया, तो जब बद्ध किया जाएगा मारेंगे वो सिस्टमेटिकली, और नारायण में सम्मति दे दी, बोले मैं आके मार डालूंगा चिंता मत करो, व्हाट यस कंस तो बिल्कुल उनका आंख खुल गया, बिजली चमक गया उसका आंख है क्या, तो बिल्कुल सब्जेक्ट को बदला दिया, बोले लेकिन कंस तो बड़ा बुद्धिमान है, मैं तो मुझे समझो अभी मीटिंग से पास रहा हूँ, मुझे बता रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना कि अभी तो आया था वसुदेव अपने लड़का को लेकर, तू वापस दे दिया हमको ना, हाँ तो उसमें क्या गलती हुआ, वो तो अनाउंसमेंट तो हुआ था आठवां गर्भ, अरे कंस तो माथ में बहुत कमजोर है लगता है वो सब्जेक्ट ट्यूशन नहीं किया था तुमने बहुत कमजोर ना, क्यों तो दिखाए ऐसे अंग पांच अंग, बोले बताओ उसमें कौन सा फास्ट है कौन सा फिफ्थ है, एक नंबर कौन सा पांच नंबर कौन सा, बोला एक दो तीन चार पांच, बोले वो यहां से गिनना शुरू, यहां से गिनने शुरू करेंगे तो, बोला ये एक दो है ये पांच होगा, बोले तो फिर आपको क्या पता देवता किससे कहां से गिनना शुरू करेंगे, आठ से गिनना शुरू करेंगे कि एक से गिनना शुरू करेंगे, भैया कोई वस्तु होता है आप इधर से देख रहे हो और वो इधर से देख रहे हैं, तो इधर से गिनती शुरू करेंगे भाई, वो आठ को एक करेंगे और एक को आठ कर देंगे, आप नहीं समझ रहे हैं, दोनों ओर से कोई वस्तु का दो साइड होता ना, वो इधर से वो छोर से देखो वो छोर से देखो, आपको कैसे पता है एक से आठ वो एक हो सकता है ये भी आठ हो सकता है, कंस का बुद्धि बोला ध्यान क्यों सारे ये मुझे पता ही नहीं था, अरे गड़बड़ हो गया, अब तेरे तो बुद्धि नहीं माथ में इतने कमजोर तुमने, उनको बिल्कुल गिनती करके दिखा दे, नीचे झुक करके अष्टद्वार पद्म निकाल कर देख दिए, देख ये आठ है ये एक हो सकता, देवताओं का गणना ऐसे ही होता, आपको बताओ नारायण अभी तक की जितने को बद्ध किया कभी सीधा सीधा बद्ध किया बताओ, छल करके नहा सारे ये वो किया ना नहीं, सारे कभी सिंह रूप ले लिया, कभी कछुआ, कभी मछली, कभी किया के बना ना नहीं, आपने यूनिफॉर्म कभी आया सब ऐसे, तो फिर आप कैसे समझ गया कि गिनती ऐसे नहीं करेंगे। तो कंस तो नारद जी को और देखा पूरा पसीना उतर था और सजा कि मेरा डेथ नोटिस तो वहीं पड़ा हुआ है नीचे पड़ा हुआ। तो नारद जी खड़े हो बोले देखो मैं जल्दी से था, बता दिया मैं जा रहा हूँ, मेरे और भी बहुत काम है, निकल गए। उनको पूजा का माला पहना को चांस ही नहीं दिए, क्या सेवा करेगा क्यों मरवाना था उसको अब निकल गए। अब कंस तो बिल्कुल तमतमाया हुआ, बिल्कुल डिसीजन चेंज हो गया। अब ये प्रश्न उठता है, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सुखदेव जी, बोले गुरु जी मेरा मन में भारी प्रश्न उठता है। बोले क्यों? बोले वहां भी कंस बेचारा जेंटलमैन था, वो तो अपने बहन को बड़े आराम से बहन और बिनोई को विदा करने के लिए स्वयं गाड़ी ड्राइविंग करके जा रहा था, कितने प्रेम था। ये देवता लोग उनका दिमाग खराब किए, नहीं तो अच्छा था उन्होंने। अरे हम जानते हैं कोई दुसंग करने से, असत्संग करने से बुद्धि बिगड़ जाती, ये देवताओं का संग ऐसे दुसंग कैसे हो गया? कोई असुर आते दिमाग खराब करते थे, असुर तो उनको डावरी दे रहे थे, गाड़ी की हेल्प कर रहे थे, लेकिन ये देवताओं आकर उसका दिमाग इतने खराब किए, वो मर्डर करने के लिए चला, वहां उसका दिमाग देवताओं खराब किए। और यहां मैं देखता हूँ देवर्षि नारद, ये तो बेचारा दया करके छोड़ दिया था, अच्छा आदमी था, सारे मथुरावासी बोल रहे थे थैंक यू कंस बहुत अच्छा किया, दिमाग खराब कर दिया जाकर के नारद ने, अब तो बिल्कुल निकला मारने के लिए, ऐसा क्यों? तब बताते हैं बोले नहीं उसका रहस्य अलग है। उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य है क्योंकि तभी जब कंस ने बैठकर गाड़ी चलाने लगा और सारे ऊपर से नीचे देवता लोग शब्द देख ही रहे थे, क्योंकि भगवान के जो पिताजी होने वाले हैं माता पिता, उनके जब विदाई उत्सव हो रहा है तो सारे विशिष्ट उत्सव में सब भाग लेने के लिए धरती के वाले तो सब थे, ऊपर से देवता लोग भी अनशन में वो फूल फेंक रहे थे, सब देख रहे थे। अब जब उन्होंने देखे कि कंस आकर के गाड़ी चलाने लगा, अब उनका तो हाल खराब होने लगा। बोले क्या? वो डर गए। बोले क्यों? बोले हम जानते हैं हमारे मालिक के स्वभाव, हम अपने ठाकुर जी के स्वभाव को जानते हैं। क्या ना ठाकुर जी, आपने कोई छोटा सा सेवा करता है उनको इतने बड़ा मानते हैं उनके सेवा को, अगर उनकी सेवा नहीं उनके भक्तों के सेवा कोई छोटा सा किया उनको तो ना जाने क्या क्या मानते हैं, और ये उनके भक्त क्या ऐसे बड़े भक्त उनके होने वाले डैडी मम्मी है, वो तो है, वही तो है, कितने बड़े भक्त होंगे जो भगवान के माता पिता बनेंगे, और उनके सेवा उनके ड्राइविंग करने जा रहा है। अगर ड्राइविंग करके उनके घर तक ले गया तब तो प्रभु कभी भी कंस का फाइल उठा फेंक देंगे, वो दुश्मन हो ही नहीं सकता है। मेरे माँ बाप की सेवा किया उन्होंने, मेरे भक्तों की सेवा किया, सारे कंप्लेन फेंक देंगे, बोले ना मैं नहीं मान सकता, तो उसको मारेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, अगर आएंगे मारेंगे नहीं, दोस्ती करेंगे, तो सेवा किया था। वो तो केवल गुण देखते हैं, अवगुण लाखों नहीं देखेंगे, एक गुण हो जाए उसी को देखने, पूरे कैरेक्टर सारे खराब, लेकिन एक बार आधा किलोमीटर तक वो ड्राइव कर लिया भक्तों के पास, वो तो इसी को देखेंगे, बोलेंगे अरे वो सेवा किया था। तो इसी कारण से देवता बड़े चिंतित हो गए, बोले क्या करें, अगर सेवा करके अगर गाड़ी तक पहुंचा दिया तब तो फिर काम बिगड़ जाए, तो इसलिए उनके दिमाग खराब करना चाहिए, तब अनाउंसमेंट किए, अरे मूर्ख तू ही क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं मारा, और ये दिमाग खराब हुआ तो जो किया अपने माता पिता को मारा, वो मारने के जा रहा था लेकिन वसुदेव जी बचा दिए बुद्धि करके। देवता लोग ने फिर सोचे और क्या करें, बचा दिए, और बचा तो दिए थे तभी, अभी तो पहला लड़का को भी बचा दिया दया करके, बोले इतने दयावान होने लगा भगवान, सुनिए मेरे माँ बाप कुछ बचा था, गाड़ी बचा था, मेरे बड़ा भाई को भी बचा दिया, मारा नहीं, मारने जा रहे थे तो कैसे भगवान तो आएंगे नहीं। तो फिर बोले देवता लोग बोले देवर्षि जी बोले बोले कुछ तो करना ही पड़ेगा। देवर्षि जी आए, दो कारण था, एक तो कंस को उसका करके, क्योंकि अगर भक्तों को कष्ट नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, क्योंकि अधर्म का बलबल हुआ तभी तो भगवान आते हैं, जदा जदा ही धर्म से ग्लानी, धर्म का ग्लानी होगा, धर्म का पालन करने से भगवान थोड़ी आएंगे, धर्म का ग्लानी होगा तब तो आएंगे, तो इसलिए ये कारण था। दूसरा कारण था, अब ये कारण बाद में बताएंगे। तो तब क्या हुआ, जिस नाराजी चले गए तब कंस ने तुरंत कोई है प्रहरी, हाँ जी, अरे मेरा गाड़ी तैयार करो, इमरजेंसी गाड़ी तैयार करो, और सैन्य को सेनापति खबर दो, एक टुकड़ा सैन्य भेज दे बसदेव का तैयार, और तुरंत गाड़ी में बैठा, एस्केलेटर दबाया, चला फटाफट। बसदेव जी अभी आपने घर में पहुंचे ही थे, घर में पहुंचे थे, पहुंच करके सारे देखे कि सकुशल पुत्र वापस आ गया, खुश हो रहे थे, वाह वाह वाह, और जाकर देवकी के हाथ में जो बेटा, देवकी भी बोला मेरे लाल वापस आया, बड़े खुश हो गया। लेकिन वसुदेव जी खुश नहीं हो रहे थे, तभी भी खुश नहीं हो रहे थे, सबने जो बोले कि अभी हम थोड़ा बाजा बाजा गीत गा, बोले चुप, कुछ नहीं करना, अरे बेटा तो वापस आ गया, अरे वापस आ गया, अब देखो तो सही, इतने क्यों अधर्जे होते हैं। वसुदेव जी जाकर अपने भवन में बारन में बैठे ही हुए थे, बैठे ही हुए थे, पांच मिनट नहीं हुआ, सारे मथुरा के साधारण लोग गए थे, जा करके बोलते थे बहुत अच्छा बड़का को वापस कर दिया, अब वापस हो गया करके बोल रहे थे, पीछे देखे साउंड आ रहे, क्या कम से बिल्कुल हाई स्पीड में गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा था, सीधा आकर वसुदेव भवन के सामने गाड़ी पार्किंग किया। कंस को इतने उतावली था, गाड़ी से उतरा नहीं, जंप किया, गाड़ी से कूद गया, ड्राइवर भी देख रहा था, महाराज क्या हो गया उनका, जंप किया, सीधा जंप करके, इतने उनको व्यस्त था, घुसा वसुदेव जी का भवन सामने था, वसुदेव जी बैठे थे, वो खड़े हो गए, क्या हो गया, बिल्कुल मूड अप लगता है, अभी आया, वो दया करके वापस कर दिया, अभी क्या हो गया। वसुदेव जी का चित्त में सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ी हुआ है, आप बंदी हो। वसुदेव जी चुप, ठीक है जो करना है, और बोल करके घुस गया आगे, क्योंकि कई बार उनके घर में गया, अंतपुरी उनको पता ही था, अपने बहन का सब रहते, वो कई बार गया भी था, उनको पता है, किसी पूछना पूछना जरूरत, सीधा घुसा, ऐसे घुसते चला गया, और उसको बोलते हैं कि जहाँ प्रसूति गृह, प्रसूति गृह समझते ना, डिलीवरी वार्ड में सीधा गया, आज ही तो लड़का हुआ था, डिलीवरी वार्ड में थी अभी तक, डिलीवरी वार्ड में सीधा घुस गया, जो सब नर्स आदि थे, उनके वसुदेव के और पत्नी थे, तो उनको बेचारे देखे, आंख आंख को विश्वास नहीं कर पा रही थी, कैसे घुसते आ रहा है युवराज, कंस स्वयं आ रहे हैं, हाँ स्वयं आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम ही नहीं था, पता ही नहीं था, नो नोटिफिकेशन, नथिंग, कोई पुलिस बॉडीगार्ड भी साथ में नहीं लिए, सीधा जा रहा था, ऐसे जल्दी से घुसते जा रहा था, अरे अपनी पत्नियों को, अपने बहनों को भी ऐसे धक्का देता था, दासी दासियों तो बिल्कुल साइड में करके दुबक जाते थे दीवार पर, ऐसे धक्का दे करके घिसटते हुए चला गया अंदर, जबरदस्ती जा करके सीधा डिलीवरी वार्ड में, देवकी बैठी थी अभी बिल्कुल प्रसूति गृह में, जब सद्य प्रसवा नारी जिस दशा में होते हैं, इस दशा में अब बच्चा को लेकर था, जाके पहुंच गया, पहुंच करके उनको, और ये कंस को इसी मूड में देख करके देवकी तो भैया कह करके मूर्छित हो गई, वो समझ गई किस लिए आई, उनके मूड में समझ रहा था, बिल्कुल आंख रंगे रंगे आंख था, रक्त चक्षु, भैया कह करके गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। अब बाकी जितने थे उनके और बाकी सारे सपत्नियां और जितने नर्स थे, सारे तो बिल्कुल थर थर कांप रहे हैं, किसका मुख से कोई वचन नहीं निकले, कोई बोले कुछ करे ऐसा कोई चांस ही नहीं दिया, सीधा नृशंसन छांप की तरह, बाज की तरह उनके गोद से छीन लिया, उस लड़के को छीन करके उठा करके लाया, उसी आंगन में वसुदेव जी देख रहे हैं, उनके परिवार के लोग देख रहे हैं, और सारे उनके पत्नियां और नर्स भी देख रहे हैं, उनके सामने जड़ के भांति से वो खड़े हैं, ऐसे नृशंसने उठाकर बाएं हाथ में उसके पैर पकड़कर खींच कर लाया, लाकर आंगन पर एक पत्थर था, वो पर उठाकर खींच कर नृशंसने ऐसे पटक करके मारा, और सद्य जात जन्म शिशु का नन्हा सा सिर ये पत्थर के टोकर में बिल्कुल कचंबर हो गया, वो रक्त की छिटा उनके वस्त्र में, वो पाप के साखी बनकर रह गया। उसी समय ऐसे दिखात करके सीधा उस हाथ में केवल उसके पैर था, उसको छिक लगाया था, वहीं से फेंका, फेंक करके मुड़ कर कहा, खड़े हो क्या, आप बंदी हो, बैठो गाड़ी में। वसुदेव चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गए, कंस का गाड़ी में बैठ गए, आप अकेले नहीं हो, देवकी भी है, अरे देवकी तो सेंसलेस पड़ी है डिलीवरी वार्ड में, मैं बोल रहा हूं ना, बोलो उन लोग को, आपके दासियों को पत्नी बोलो उनको लाए। वसुदेव जी समझ चुके थे कि और यहाँ तो कुछ बोलने वाला है नहीं, जो हो रहा है मैं सोच चुका था, वो जो हो रहा है वहाँ प्रतिरोध नहीं किया जा सकता। तुरंत उन्होंने शांत स्वर में अपने पत्नियों को दासियों को बोले देवकी को ले आओ। कुमार वसुदेव के आदेश के अनुसार दासियाँ और उनके सपत्नियाँ जा करके सद्य प्रसूता रक्त रंजिता मूर्छिता अवस्था में देवकी को उठा करके लाए, लोड कराए गाड़ी में, वो तो स्वयं मूर्छित थी। वसुदेव गोद में लेकर के उसको मूर्छित अवस्था में उसको लोड करा दे, उसको पड़े रहे और कंस बैठ गया। ड्राइवर को बोला करागा जेल चलो, सीधा जेल की ओर गाड़ी रथ चला, जेल की ओर चला। जा करके जुबराज जेल के सामने उतरे, जेलर भी डर गया क्या हो गया, वसुदेव कुमार आ रहे हैं, उनके सेंसलेस उनके देवकी आ रही है बिल्कुल रक्त डिलीवर वार्ड जिस अवस्था था देवकी की, इसी हालत में इस मिशन सने जेल का दरवाजा खोला, अंदर गया और जा करके जेल की कोठरी खोलवा दिया, खोल करके उसके अंदर उनको छोड़ करके वापस आया। अब मैं काल बताऊंगा बाकी क्या हुआ उस जेल के बारे में और आगे क्या हुआ। हरे कृष्ण। सड़न तो हो गया ना, बारिश हो रहा है, चलेगा कितने तक? हाँ 11 बजे तक तो फिर मुझे कल क्लास नहीं देंगे। 5-10 मिनट और कर सकते, 9:30 बजे तक चलेगा, 10 मिनट है ना आपके घड़ी में, 5-10 मिनट, क्योंकि मुझे चिंता है फिर कल वो बैठे ना मालिक वो बोलेगा कि नहीं ये टाइम से आउट जा रहे हैं और ऊपर से फोन आ जाएगा प्रभु जी भी निकलने जा रहे हैं। सबका अपना अपना काम है। तो केवल कारागार का परिचय देता हूँ मैंने। जादव के कैपिटल सिटी मथुरा में, क्योंकि ये दिग्विजय राजा का राजधानी था मथुरा नगर, तो वहाँ और सदियों से राजधानी कैपिटल सिटी था, वहाँ जेल भी था, राजकीय कारागार था, रॉयल जेल था। लेकिन पीढ़ियों से उग्रसेन जब से राजा बने, उनके पिताजी जब से राजा थे आहुक महाराज, तब भी से वो जेल तो था, लेकिन वो जेलर भी था। वो राजा से पहले के राजा के जमाने में जेलर था, वो बुढ़ा हो चुका है, 80 साल का हो चुका है, बड़े ईमानदार जेलर था उनने। लेकिन वो जेलर भी आपने जीवन काल में 80 साल अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई जेल का एक्टिवेट होना देखा नहीं था, कि कोई कैदी आए नहीं थे जेल में, नाम भर के लिए कारागार था, कभी खुला ही नहीं था गेट उसका। साल में एक बार दिवाली के दिन खुलता था, थोड़ा सफाई होता था, चुना पुताई होता था बस, बाकी साल भर 364 दिन बंद रहता था। वो जेलर बेचारा बैठता, कोई कैदी आते नहीं थे, कोई दोषी दागी होते नहीं, सब ठीक ठाक चलता था, कभी नहीं जेल का। 80 साल उनके कैरियर गया, 2 राजाओं के जमाना बिता चुका था, कोई जेल में कभी आए नहीं थे। अभी जब कंस ने युवराज बना, महासेनापति पोस्ट में लिया, उन्होंने हाई बजट पास कराया, वो पूरा रिनोवेशन कराया, इतने पैसा खर्चा करके जेल को रिनोवेट कराया, सारे बहुत पुराना था 80 साल का, सारे जो बाउंड्री वॉल था उनको सब रिकंस्ट्रक्ट रिनोवेट कराया, रूम को सब रिनोवेट कराया, जो कुआं था उनको रिनोवेट कराया और सब ठीक ठाक करके पंडित हन करके। तो उनको पूछा भी गया था, महाराज भी पूछे थे ये बेकार का खर्चा जेल में इतने बजट क्यों खर्चा कर रहा है, ये तो कोई प्रोडक्टिव खर्चा नहीं है। तो उन्होंने बोला महाराज कभी भी आगे काम में आ सकता है, आज है कभी आगे कोई काम में आ सकता है, जेल का देखभाल होना चाहिए। क्या पता था कि वसुदेव को भी स्वयं जाना पड़े। तो जो भी हो, तो अभी तक जो साल भर में एक दिन खुलता था, रिनोवेशन हो गया भी साल भर तब भी काम नहीं हुआ था, तो पहले बार जेल के अंदर किसी को लाया गया और वो भी महानिर्दोष वसुदेव और देवकी। और वो भी कौन थे, कोई दोष उनका क्या था जिनको जेल में डाला? दोष एक ही था, क्योंकि भगवान के होने वाली पिता और माता थे। यही तो दोष था उनका, और कोई साधारण पुरुष का माता पिता होते तो ऐसा नहीं होता। यही उनके दोष था सबसे बड़ा, कि होने वाले परम ब्रह्म परम पुरुष के होने वाले माता पिता थे, यही बड़े उनका गुनाह था। पता नहीं वो भगवान कितने निष्ठुर हो सकता है। आपने होने वाले माता पिता अभी इतने दुख में वसुदेव हैं, असहाय अवस्था में है, उनके माँ तो बिल्कुल सेंसलेस अवस्था में है, ऐसे ब्लड सेड और मैंने किस अवस्था आप सोच सकते हैं। इसी अवस्था में उनको अनलोड करके गाड़ी से बिल्कुल मैले कुचले धूल भरा हुआ है इस रूम के अंदर, कारपेट में नहीं बिछाया साहब, क्योंकि कोई पता नहीं था कि आज एक्टिवेट होगा, कर जेलर को मालूम नहीं था, विदाउट नोटिस सीधा वही डाल दिए अनलोड करके। वसुदेव जी कुछ बोलना चाह रहे थे, कुमार नहीं सुना जाएगा, चुपचाप रहो बाद में सुन लूंगा, आ गए छोड़ करके उनको। इस अवस्था में वसुदेव जी आपने गोद से निकाल करके नीचे सुला दिए, वही धूल भरे घर के अंदर भगवान की होने वाले माँ कुमार वसुदेव के पाट महिषी देवक महाराज के सबसे छोटी बेटी, कंस के सबसे स्नेह और आदर के पात्री छोटी बहन देवकी माँ, सर्वगुण संपन्ना थी, उनको ऐसे झूल में धूल भरे घर में नीचे सद्य प्रसूता मूर्छिता ब्लड के अंग सारे रक्त अंगा, इस अवस्था में उनको उतार करके वसुदेव जी दोनों हाथ सर में दे करके बैठ गए, क्या करूं मैंने, अब क्या कर सकता हूं। चला गया वो दमास तो मुझे अनलोड करके, तभी इलेक्ट्रिसिटी भी था नहीं, शाम हो रहा था, अंधकार भी आ रहा था। वसुदेव देखे खिड़की से सूर्य अस्ताचल में जा रहे हैं, सूर्य तो अस्त हो रहे हैं, दूसरे दिन सूर्य उगेंगे, लेकिन मेरे दुर्भाग्य के सूर्य कब अस्त होंगे और सौभाग्य के सूर्य कब उदय होंगे, वो आशा आशा में ही रह गया था उनका। इस दशा में कंस आया, आकर गेट के ऊपर खड़ा रहा, जेल के ऊपर खड़े होकर के दरवाजा को देखा, ताला को लोग को हाथ लगाकर देखा, ठीक ठाक है, नया दरवाजा लगाया था मोटा बिल्कुल होल्डिंग करके, कितने 16 गज के और जो है 5-10 गज वाला बहुत मोटा चादर का लगाया था होल्डिंग करके। और वो जो बहुत ईमानदार राजभक्त जेलर था, अरे बड़ा तागड़ा, इतने 80 साल से था, उनको वहीं पर ऑन द स्पॉट निकाल दिया, रिटायर किया, बोला तेरा काम नहीं अब जाओ। क्यों? अरे इतने दिन का बिल्कुल स्वामी भक्त राजभक्त था बाकायदा, क्यों? जानता था ये महाराज के अनुगत है, मेरा बात नहीं मानेगा, राज आज्ञा मानेगा, तो इसलिए उनको सबसे पहले काम किया उनको जेल में डाल करके, वो जेलर को सेवानिवृत्त कर दिया, उसको रिटायर किया, उसी जगह में उसी समय अपॉइंटमेंट किया कि महाकाला असुर को वहाँ डाल दिया, अपना पार्टी के लोगों को वहाँ डाला। अब डाल करके वापस आया, जब पता चल गया कि और खबर पूरा मथुरा में बिजली की तरह हो मैसेज फैल गया, सारे मथुरा के जनसाधारण आकर के राजभवन में बताया महाराज उपसन को जाकर उनके लड़का को मारा, ऐसे नुकसान से करके मार करके उन दोनों को जेल में डाल कर लेकर गया। उग्रसेन जब सुने इस बात को तुरंत राजभवन बैठ करके आदेश पास किए, बंदी करो उसको, उनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन वसुदेव आदेश तो दिए, लेकिन उनको भी पता चलता है आदेश पालन हो पाएगा कि नहीं, उनको डाउट हो रहा था। क्योंकि सत्ता इतने हद तक उनके हाथ में जा चुका था, पूरे आर्मी उनके हाथ में था, पुलिस डिपार्टमेंट उनके हाथ में था, प्रशासन प्रतिरक्षा उनके हाथ में था, तो आदेश देने के बाद भी उन्होंने डाउटफुल थे, लेकिन फिर भी जानते थे अनेक राजभक्त हैं, ईमानदार लोग तो फिर भी हैं मथुरा में, लेकिन ऑफकोर्स थे भी मथुरा में राजभक्त, बहुत ईमानदार लोग थे जो अन्याय को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इस प्रकार आदेश दे करके और उन्होंने क्या करेंगे, आदेश दे करके तुरंत अपने तैयार हो रहे थे, अब अरेस्ट किया जाए, जादव राज महासभा उसका विचार करेगा, इतने बड़े गुनाह किया उन्होंने, मर्डर किया और ऐसे करने जा रहा है, तुरंत उनके आदेश का पालन करे कि दूत घोड़ा दौड़ करके चला कि कंस को जाकर बताया गया यू आर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट करने के लिए। वो दूत भी जा रहा था, चैन लेकर जा रहा था मानने का, वो डर रहा था मैं अरेस्ट कर पाऊंगा या नहीं। तब तक तो क्योंकि कई लोगों को चैन चांस कर चुका था, अपने हाथ में पूरा सत्ता ले रखा था उन्होंने, दौड़ कर जाकर के पहुंचा। कंस भी जेल से निकल के आ रहा था, जाकर सुना दिया राज आदेश, राज आज्ञा, यू आर अरेस्टेड, युवराज आप बंदी हो। कंस ठीक ठाक कर हंसने लगा, कौन अड़क दिया न महाराज उग्रसेन का आदेश, राजेश आप अरेस्टेड हो। हंसने लगा, वो हक्का बक्का और खड़ा है, जाओ वापस। न सर कहाँ जाऊँ, मैं लेकर आया था बांधने के लिए, बेशरम जाओ। न सर कहाँ जाऊँ, जा करके महासेनापति की बोलो, महासेनापति तो खुद ही था, जाकर मेरा असिस्टेंट उसका नाम ले बोला, उनको जाकर पैठिक और असीलम को बताओ कि पूरे राजभवन घेराव कर दिया जाए इमीडिएट। वो बेचारा भागा, जिस स्पीड में आया था स्पीड में भागा, बिठा करके वो बेचारा दूत है, क्या पता कि अभी सरकार चेंज ना हो जाए, वो किसका आदेश पालन करेगा, वो भी डाउट में था। दौड़ करके आया, आ करके असीलोक जो भी नया मिनिस्टर अपॉइंटमेंट हुआ था कुछ महीना पहले, उसने बताया कि युवराज के आदेश हो गया कि राजभवन को घेराव कर दिया जाए। इस प्रकार के राजभवन के घेराव का ऑर्डर पा करके और पूरे सैन्य शक्ति के लेकर के राजभवन को घेराव कर दिया गया। कंस भी आके पहुंचा ही नहीं था और पूरे महाराज उग्रसेन ने अपने सारे सेनाओं को तैयार करके, जितने और ज़्यादा वीर थे उनके इकट्ठा करके उनके प्रतिरोध करेंगे, कंस को सामान करना पड़ेगा, बहुत उद्धत हो रहा है उसे देखेंगे, सारे गर्म खून हो रहा था बड़े बड़े यादव तरुणों का, हाँ पूरे राजभवन विशाल प्रांगण सारे गर्म खून, ये करेंगे वो करेंगे, सब गुस्से में कांप रहे थे और सज्जा हो रहे थे, हम छोड़ेंगे नहीं, देख लेंगे हम प्राण जब तक है नहीं छोड़ेंगे। और उनको पता नहीं था कि बाहर से घेराव हो रहा है करके, ऑलरेडी कड़न हो रहा है। अब आगे चल करके क्या हुआ वो कल बताएंगे। हरे कृष्ण
श्रीमद् भागवतम की जय।